सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। बोलो द्वादशांग मयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आत्माओं, हमारे स्वाध्यायी भाई बहन, आप प्रवचन निर्देश का लेकर के अध्ययन के लिए उपस्थित हुए हैं। इस प्रवचन निर्देश का के अंदर सर्वप्रथम वक्ता के गुणों को बतलाया गया, पुनः सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कारणभूत जो चीजें हैं उनके बारे में बताया है। तो कारणों में चारों गतियों में भी कारण बताए तथा सम्यक प्राप्ति के लिए पांच लब्धियों का प्रकरण चल रहा है। क्या सम्यक दर्शन में सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यक के बारे में बताया है? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, ये तीन प्रकार के जो सम्यक हैं, प्रथम बार प्राप्त होने वाले उपशम सम्यक दर्शन को प्रथमोपशम कहा, जिसे मूल रूप में हमें जानना है कि अनंतानुबंधी शुष्क और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सात दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का उपशम करने वाला प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। उसमें से अनादि मिथ्या दृष्टि के पांच ही प्रकृतियों का उपशम होता है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व प्रकृति। सादी मिथ्या दृष्टि माने जिसको पहले कभी उपशम सम्यक दर्शन प्रथमोपशम हो चुका है, उसको पांच छह सात प्रकृतियों के उपशम से भी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। पुनः पांच लब्धियों के अंतर्गत ये बहुत विशेष बात बताई गई है कि क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, इन पांच लब्धियों में से चार लब्धियां प्रायोग्य लब्धि तक भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों की हो सकती है, और करण लब्धि केवल भव्य जीव को ही होगी जिसके नियम से सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। इस प्रकार से करण लब्धि को भी जान लिया, उपशम सम्यक का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी जाना कि अंतर मुहूर्त ही है। अब हम आगे चलते हैं क्षायोपशमिक सम्यक की उत्पत्ति के कारण। पेज नंबर खोलिए 25। प्रथमोपशम सम्यक की बात समाप्त हो गई है और अब आते हैं क्षायोपशमिक या क्षयोपशम सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक जिसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति के कारण, कैसे वो उत्पन्न होता है, उसमें क्या निमित्त होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन छह प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय और इन्हीं के सदवस्था रूप उपशम होने से तथा देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक्त प्रकट होता है, उसे क्षायोपशमिक या वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। अब आप देखिएगा कि सब में सात प्रकृतियों के उपशम क्षय या क्षयोपशम की बात है। तो सद्वस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय ये क्या चीज है, यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये चार हुई, और मिथ्यात्व के जो तीन टुकड़े किए थे प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी चक्की के द्वारा, यंत्र के द्वारा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, इन तीन में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दो को अनंतानुबंधी चतुष्क में मिलाया तो कितनी हो गई, छह प्रकृतियां। छह प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय एक तो होता है नष्ट हो जाना और एक है उदयाभावी। क्षय का मतलब है जितनी देर उदय में नहीं आए, उदय का अभाव रहा तो वो एकदम क्षय के समान, नष्ट होने के समान परिणामों की निर्मलता को रख देती है। जैसे क्या है कि कांच के ग्लास में आप पानी डालिए, पानी के अंदर उसको साफ करने के लिए निर्मली फल यानी कथक फल जिसे कहते हैं फिटकरी उसको डालो, पानी जो है उससे साफ हो जाएगा और कीचड़ नीचे बैठ जाएगा। कीचड़ माने गंदा, पानी के अंदर जो भी थोड़ा बहुत गंदापन है वो नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे जो बैठा वह उदयाभावी क्षय है, यानी कि अभी ऊपर से पानी एकदम निर्मल दिख रहा है, लेकिन जरा सा ग्लास हिलाएंगे तो क्या होगा, तुरंत वो कचरा वो कीचड़ जो है फिर से पानी में आ जाएगा। तो ये उदयाभावी क्षय और इन्हीं के सदवस्था रूप उपशम माने विद्यमान रहना, ऊपर का जो निर्मल जल है केवल तो वो उदिया उसके अंदर छहों प्रकृतियों का नाश हो जाना, उदयाभावी क्षय उदय का अभाव होना, और सदवस्था रूप सब माने नीचे जो कीचड़ बैठा हुआ है, यानी यही छह प्रकृतियां अभी उपशम माने शांत हैं, निमित्त मिलने पर तुरंत ही भावों को गंदा करने के लिए तैयार रहती हैं। तो ये चीजें हैं उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। उपशम माने शांत रहना और ऊपर का जो निर्मल जल है उसके समान जो परिणाम है, जब ये छह प्रकृतियां बिल्कुल उदय नहीं आती, उनका अभाव थोड़ी देर रहता है, तो वह निर्मल परिणाम उदयाभावी क्षय कहलाते हैं। और उसमें अभी शांत है सद्वस्था रूप उपशम, क्योंकि अभी उनकी सत्ता विद्यमान है। अब क्या कहते हैं, इनके उपशम होने से तथा देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक प्रकट होता है। जो सम्यक प्रकट हुआ तो देशघाती सम्यक प्रकृति को देशघाती क्यों कहा, आत्मा के सारे गुणों का घात नहीं करता, ये जो सम्यक प्रकृति है ये थोड़ा दोष तो लगा देता है कि मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, मेरे संत हैं, मेरी पुस्तक है, ये जो थोड़ा बहुत भावों को मलिन करने वाली चीज है ये मलिन तो कर देती है, लेकिन पूरी तरह से सम्यक को नष्ट नहीं कर सकते। ये सब आगम की परिभाषाएं उन लोगों को बहुत ही ध्यान देने लायक है कि अगर किसी ने कह दिया ये मेरा मंदिर है, ये मेरी भगवान है, शांतिनाथ भगवान का विधान करने से विघ्न शांत हो जाते हैं, संकट शांत हो जाते हैं, अंत किसी निश्चयाभासी के मुख से निकलता है, अरे यही भाव तो मिथ्यात्व है। क्या कहा, यही भाव तो मिथ्यात्व है, नहीं, ये आगम क्या कहता है, आगम कहता है कि सम्यक प्रकृति जो देशघाती है, कुछ गुणों का घात करने वाली है लेकिन संपूर्ण गुणों का घात करने वाली नहीं है कि जिससे सीधे मिथ्यात्व तो हो जाए, नहीं। जैसे किसी वृद्ध ने हाथ में लाठी ली हुई है और वो चलता है तो उसकी लाठी कांपने लग जाती है ना, लाठी कांपती है तो उसका शरीर कांपने लग जाता है, लेकिन वो गिरा तो नहीं ना, अभी कांप रहा है ना, तो कांपने के समान ये देशघाती प्रकृति सम्यक प्रकृति जो है ये सम्यक दर्शन में थोड़ा बहुत दोष लगाती है किंतु उसको नष्ट करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको देशघाती का, तो अब इस प्रकृति का इस कर्म का क्या काम है, उस देशघाती सम्यक प्रकृति के वजह से फिर सम्यक प्रकट हो गया। यानी सात प्रकृतियों का मुख्य कार्य है ये सात प्रकृतियां जो हैं यही हमारे सम्यक दर्शन को उत्पन्न नष्ट करने में या सम्यक दर्शन को नहीं उत्पन्न होने में बड़ी भारी निमित्त हैं। अब उनका उनमें से प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय हो गया, परिणाम निर्मल हो गए, और सद्वस्था रूप उपशम हो गया, उसकी गंदगी नीचे बैठ गई यानी कि परिणामों में मलिनता आ रही थी, तो इनके उपशम होने से परिणामों में निर्मलता आ गई। फिर एक प्रकृति ने काम कर दिया कि उसने किया कि वह प्रकृति उदय में है, उससे थोड़ा बहुत जैसे जल गंदा हो सकता है, पूरी तरह से नहीं, तो ऐसे समय में जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसको कहते हैं क्षायोप समिक। क्षय और उपशम इन दोनों को मिला करके, तो क्षय कैसा, जो पूरी तरह से क्षय हो जाएगा वो फिर से आएगा नहीं, और उदिया भावी क्षय है तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन से व्यक्ति मिथ्यात्व में भी आ जाता है। तो उदिया भावी क्षय और उपशम सदवस्था रूप उपशम इन दोनों को मिलाने से क्षयोपशमिक या क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। इसका दूसरा नाम है वेदक सम्यक। वेदक इसलिए है कि सम्यक प्रकृति जो है बार बार आत्मा में वेदन कराती है, अनुभव कराती है, या किंचित दोष को उत्पन्न कराने लगती है जिससे ममकार आ जाता है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन का ये लक्षण ही है, इसलिए इस सम्यक दर्शन को भी यदि प्राप्त कर लिया तो समझो कि उसमें कोई दोष वाली बात नहीं। आज पंचम काल के अंदर जिसको भी सम्यक दर्शन है या जिसका दृढ़ भी हो रहा है, सबका क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही है, क्षय होना नहीं है, क्योंकि इन सात प्रकृतियों का पूर्ण क्षय करने की योग्यता अभी नहीं आई है। और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन एक बार हो गया उसके बाद पल्योपम के असंख्यात में भाग तक फिर होगा ही नहीं, तो बीच में क्या या तो में रहेंगे या क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और असंख्य कर्मों की निर्जरा कर लेंगे। अनंतानंत संसार संतति क्षेत्र कारणम, जो बात कही है पूज्यपाद आचार्य ने, जिन राज पदाम्भोज स्मरणम शरणम मम। अनंतानंत संसार की संतति परंपरा को छेद करने में कारण जो जिन बिंब का दर्शन है और उससे उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ही है। इसलिए भगवान के दर्शन से बाह्य निमित्त को प्राप्त करके और अंतरंग में कर्मों का उदयाभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपशम होना ही चाहिए, होता है, तभी हम सम्यक दृष्टि बनते हैं, आपकी समीचीन दृष्टि बनती है और व्यक्ति असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने में सक्षम होता है। इसमें भी कह रहे हैं कि पूर्वोक्त पांच लब्धियां कारण है ही है, एक एक पंक्ति का एक एक शब्द हृदयंगम करने योग्य है। क्या समझे, एक एक पंक्ति इसका एक भी शब्द छोड़ने लायक तो है ही नहीं। अब मान लो कह रहे हैं कि पूर्वोक्त पांच लब्धियां, कौन सी लब्धियां, क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण, ये पांचों लब्धियां इसमें भी कारण पड़ेंगी और इसमें कारण पड़ेगी तब क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्रकट होगा। किंतु सम्यक प्रकृति का उदय होना ये मुख्य मुख्य कारण है। क्षयोपशम सम्यक जिसको भी होगा, क्षयोपशम सम्यक का लक्षण ही यही है कि जिसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो आपको ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन की बात हमने बताई है, इसमें पूर्वोक्त पांचों लब्धियां कारण है, इसलिए उन लब्धियों को जुटाने के लिए हमें अपने क्षयोपशम को बढ़ाना होगा, परिणामों की विशुद्धि रखनी होगी, गुरु के उपदेश को ग्रहण करना होगा। देखो चातुर्मास का काल आ रहा है, सैकड़ों नगरों को संतों के चातुर्मास का सौभाग्य मिलने वाला है और ऐसे समय में न जाने कितने भव्य प्राणी ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करना भी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे स्थान है कि जहाँ पूजा करने वाला अभिषेक करने वाला कोई नहीं होता तो समाज के अंदर व्यवस्था बनाई जाती, भैया 7 दिन तेरी ड्यूटी है, 7 दिन हमारी ड्यूटी है, ऐसे ड्यूटीज लगानी पड़ती हैं। लेकिन जब संत का चातुर्मास संपन्न होगा होता है तो उस मंदिर के अंदर भीड़ लग जाती है। क्या कारण है, संत ने भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भव्य प्राणियों के अंदर भर दी है कि जो कभी मंदिर आना भी पसंद नहीं करते थे, जो धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करने में भी आलसी होते थे, तो वे भी आ करके और अभिषेक पूजन करते हैं। तो ये सब क्या है, मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर बढ़ना है, ये सम्यक्त वर्धिनी क्रिया है। संतों का चातुर्मास कराना, प्रभावना करना, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना, आहार देना, भैया वृत्ति करना, ये सम्यक्त वर्धिनी क्रियाएं हैं। आज संत ही इस संसार के अंदर भव्यों को सम्यक दर्शन प्रदान करने में, प्राप्त कराने में बड़ी प्रबल निमित्त हैं। तो अपने को इन कारणों को हमेशा उपस्थित होने के लिए संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दो, कहते ना संतों का समागम और हरि भजन का मतलब भगवान की भक्ति, ये दुर्लभ है संसार में। और इन दोनों को प्राप्त कर लिया तो जो आत्मा पवित्र हो गई, इसलिए हर धर्म के अंदर सत्संग करने की प्रेरणा दी गई है। सत्संग कराते हैं जो लोग, तो सत्संग मतलब है बुरी आदतें छुड़वाना और अच्छी आदतों को लाना। तो सत्संग करके अपने अंदर सत्संग कथय किम न करोति पुंसाम, ये छोटी छोटी सूक्तियां सत्संग करने। एक बार महात्मा गांधी एक अमेरिकन व्यक्ति के साथ में रहते थे, अमेरिका में जब गए शिकागो के सम्मेलन में, तो वहां पर एक अंग्रेज के यहाँ रुके। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब वो शाकाहारी भोजन करते थे तो अंग्रेज के अंदर भी भावनाएं भर गई कि भाई ये भारतीय हैं, ये शाकाहारी भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन से ये लाभ बताते हैं, मांसाहारी भोजन करने से मन के अंदर तामसी प्रवृत्ति आती, तो उसके अंदर प्रभाव पड़ा और उसने मांसाहार करना छोड़ दिया। उस घर के लोगों ने सोचा ये इंडियन आकर के क्या करता है हमारे घर के अंदर, हमारी संस्कृति को बदलने में लगा है, जल्दी जल्दी आकुलता करने लगे कि गांधी तू तो यहां से जा, नहीं तो मेरे घर को बदलेगा, मेरे के लोगों को बदल करके और न जाने कितने लोगों को बदल देगा। तो ये भारतीय संस्कृति, जहां भी आज भी हमें गौरव होता है कि भारत के बाहर भी हमारे जितने भी जैन संस्कृति का पालन करने वाले, अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाले लोग हैं, वे अपने गुणों का पालन करते हुए सदाचार का संदेश देते हैं। जब भारत के अंदर आते हैं हम उनसे बोलते हैं तो कहते हैं माता जी हम कभी भी जरा भी मांसाहार नहीं करते। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो खुद किचन के अंदर खाना बना करके, अगर अकेले हैं, पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, भोजन बनाते हैं अपनी किचन, कई बार वीडियो चैट के माध्यम से ज्ञानमती माता जी को दिखाने लग गए। दिल्ली का एक गौरव जैन नाम का बच्चा वो किचन दिखाता था कि माता जी देखिए हम यहाँ पर पूर्ण शाकाहारी भोजन करते हैं, तो ये क्या है भारतीय संस्कृति के संस्कार, जैन संस्कृति के संस्कार। इसलिए आपका बच्चा भी कहीं बाहर जाने लग जाए तो सबसे पहले उसे नियम देना खानदान की शुद्धि रखना और खान पान की शुद्धि रखना। देखो प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का, लेकिन सारे विषय एक दूसरे से रिलेटेड है। कि अगर आपने खानदान की शुद्धि रखी, अपनी कुल परंपरा के अंदर ही भारतीय नारी से, भारतीय कन्या से, जैन कन्या से, अपनी जाति की कन्या से शादी की, कुल शुद्धि रही, खानदान शुद्धि बनी रही। कल भी आए एक सज्जन नासिक से आए, हमारे शीतल सुवर्णा पाटनी, उनका बेटा जो है बाहर रहता है, बाहर जॉब करता है अमेरिका के अंदर, लेकिन इंडिया में आकर अपने खंडेलवाल जैन समाज के अंदर ही कन्या से शादी की। बहुत अच्छा लगा, खूब अच्छे से माता जी ने उसको आशीर्वाद दिया, बेटा आप सब लोगों को खानदान की शुद्धि रखना है और उसके साथ खान पान की शुद्धि रखना है, खान पान बिगड़ने ना पाए इसका हमेशा ध्यान रखना है, शाकाहारी भोजन, भारतीय संस्कृति के नियमों का पालन करना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। तो जब आप इन चीजों का पालन कर रहे होंगे तो आत्मा में पवित्रता बढ़ेगी, और हो सकता है उसके बाद किसी गुरु का प्रवचन सुन लें, शास्त्र का स्वाध्याय कर लें और कोई भगवान के दर्शन कर लें, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई दुर्लभ बात नहीं है। सम्यक दर्शन अत्यंत सुलभ भी है, और आपने कोई लीक से हटके काम किया तो सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ भी हो जाएगा। और सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो नियम से समझो कि एक ना एक दिन अपने को मोक्ष जाना निश्चित है। तो ये कहा कि इस सम्यक्त की उत्पत्ति में पांचों लब्धियां कारण है, सम्यक्त प्रकृति का उदय होना ये मुख्य कारण है। उसके आगे क्या कहते हैं, इस सम्यक्त की उत्पत्ति में भी अधा प्रवृत्त आदि तीन करण होते। कौन से तीन करण? अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। इनके हमने सबके लक्षण आपको अच्छे से बताए। छोड़ना, बीच में अगर कोई रिलीजियस ब्रेक भी आ जाए, बराबर आप पीछे के पन्नों को पढ़ते रहना और प्रवचनों को यूट्यूब पर भारत गौरव ज्ञानवती माता जी नाम के यूट्यूब चैनल से वीडियो प्रवचन, इंसाइक्लोपीडिया जैनिज्म .com से ऑडियो प्रवचन लेकर के सुनते रहना। ये बीच में कार्यक्रम आने वाले हैं तो थोड़ा बहुत ब्रेक भी आएगा, लेकिन उसके बाद हम आपकी जल्दी से परीक्षा लेने वाले हैं। और यद्यपि हमने सुना था दो तीन चैप्टर कराने के बाद परीक्षा लेंगे, लेकिन ये सम्यक दर्शन का प्रकरण ही इतना महत्वपूर्ण है, इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि एक-एक पंक्ति जब आप रट लेंगे, अच्छे से उसका उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे, तो आपका ये चैप्टर पढ़ना कार्यकारी होगा, सार्थक होगा। इसलिए हम इस एक चैप्टर की भी पहले परीक्षा लेंगे। तो कह रहे हैं कि इन ये करण भी होते हैं, अथवा अनिवृत्ति करण को छोड़कर दो करण भी होते हैं, कदाचित बिना करण के भी हो जाता है। बिना करण के इसलिए हो जाता है कि प्रथमोपशम सम्यक्त में तो इन करणों को पार कर ही लिया है, तो आप छायोपशमिक सम्यक दर्शन के अंदर कदाचित ये करण ना भी हो तो भी परिणामों में विशुद्धि आ जाएगी। जाति स्मरण आदि बाह्य कारण तो सभी के लिए होते ही हैं, इसलिए अंतरंग और बहिरंग इन सब कारणों को जान करके हम सब मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं, तो मानव जीवन का सदुपयोग करते हुए सम्यक दर्शन की दृढ़ता में आगे निरंतर बढ़ते रहें और जीवन का सदुपयोग करते रहें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि हम छायोपशमिक सम्यक दर्शन को किस प्रकार से प्राप्त करें और उसे दृढ़ करें।